તારીખ 13/11/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 223 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 130
ક્રમ 223 ચલતા હૈ ભક્તિ કે વિષય મે સુભાગ ભાઈ ને પ્રશ્ન પૂછા થા કે ભક્તિ કે વિષય મે આપ કુછ લિખે હમકો ઉસ વિષય પર ઓર સ્પષ્ટીકરણ દે રહે હૈ કે સ્વરૂપ કા સ્વરૂપ મે લીન હોના મુમુક્ષુ જીવ કે લિયે સ્વરૂપ મે લીન હોના वो आसान नहीं है, कठिन बात है। इसलिए कठिन बात है कि स्वरूप निरंजन निराकार है। ज्ञान में जब आता नहीं तो उसमें लीनता कैसे होगी? लीनता, एकाग्रता जो चीज ज्ञान में होती है उसमें आती है। तो स्वरूप को ज्ञान में लेने का कौन सा तरीका है? और वो एक ही तरीका है कि सत्पुरुष की पहचान होवे और उसकी भक्ति में लीन होवे। सत्पुरुष की पहचान होने से उसमें उसके हृदय में विराजमान परमात्मा है, उसका दर्शन होता है और उस तरह से परमात्मा पद ज्ञान में आता है। और एक ही रास्ता है, इसका जो दूसरा मार्ग है नहीं।
भक्ति में लीन होने का जो बात है, उसमें भक्ति में लीन मतलब आज्ञा में एकदान होना,
वही बात हो गया। भक्ति में लीन होना कहो, आज्ञा में एकतान होना कहो, एक ही बात है। पहलू अलग अलग है एक ही परिस्थिति का, लेकिन हमेशा साथ में होता है। जो आज्ञा में एकतान होता है वो भक्ति में लीन हुए बिना कैसे होगा? जिसको भक्ति की लीनता नहीं है वो आज्ञा में एकतान कैसे होगा? तो दोनों साथ में ही रहता है। लेकिन विशेष बात वो है कि भक्ति भी कितनी, कि परमात्मा की भक्ति होवे उतनी, उतनी भक्ति की बात है। और वो बात इसलिए कठिन पड़ती है कि जीव को अनादि से तो बाह्य दृष्टि है, और बाह्य दृष्टि होने से सत्पुरुष की बाह्य प्रवृत्ति, बाह्य चेष्टाएं, ये सब ऐसी दिखती है जैसे सामान्य मनुष्य की होती है, वैसी दिखती है। खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लौकिक व्यवहार भी करते हैं, लौकिक व्यापार भी करते हैं, गृहस्थी होती है। जैसे गृहस्थ में सबको बीवी बाल बच्चे होते हैं, उनके भी होते हैं। सब ऐसी परिस्थिति में उसकी परमात्मा के स्तर की भक्ति करना, ये दो बात का मेल नहीं खाता है। प्राय उसका मेल नहीं खाता है तो मार्ग विकट हो जाता है, अगर मेल खाता है तो मार्ग निकट हो जाता है। ये बात समझाते हैं। भक्ति के विषय में जो समझाने का इरादा है, आशय है, वो है कि अगर परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ और इस परमात्मा में एक भाव हुआ तो मोक्ष मार्ग निकट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानी और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है ऐसा दिखेगा, वरना मोक्ष मार्ग विकट है। ये कहा कि ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में अंतर ही नहीं है, और जो कोई अंतर मानता है उसे मार्ग की प्राप्ति परम विकट है। ऐसा क्यों? ज्ञानी को ज्ञानी मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते हैं। इसमें क्या फर्क पड़ता है? और ज्ञानी को ज्ञानी माने तो उसमें अनुचित भी क्या है? और वो परमात्मा हुए नहीं तो परमात्मा नहीं मानते, तो ज्ञानी ज्ञानी कहते कि हम तो परमात्मा हुए हैं। शिष्य ऐसे में वो बात लिखा है, उन्होंने शिष्य ऐसे में ऐसा लिखा है कि हम तो परमात्मा हुए हैं, वैसे स्वरूप से तो थे ही, लेकिन जब अनुभव हुआ हमारे परमात्मा स्वरूप का, तब हमको अनुभव से ये बात मालूम पड़ा कि हम तो परमात्मा है, तो है इसका मतलब हम हो गए। स्पष्ट लिखा है, नीचे छे ज्यादा क्या कहें, इस विषम काल में परम शांति के धाम रूप हम दूसरे श्री राम हैं अथवा दूसरे श्री महावीर ही है, क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप हुए हैं। वो बात क्या है कि हम दूसरे श्री राम हैं, हम दूसरे श्री महावीर हैं, तो क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप हुए हैं इसलिए कहते हैं। और ये हमारा अंतर अनुभव है, ये हमारा अंतर अनुभव है, कोई अभिमान की मान्यता से वो बात नहीं कह रहे हैं, अभिमान के कारण से नहीं कह रहे हैं, ये हमारा अंतर अनुभव बोलता है। और इस अंतर अनुभव के साथ साथ हमारी जगत के जीवों पर जो कारुण्य वृत्ति है, वो परम कारुण्य वृत्ति से ये हृदयोद्गार निकले हैं हमारे। तो इसलिए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति विकट बताई कि जिसको ज्ञानी और परमात्मा में अंतर दिखता है उसकी बाह्य दृष्टि अभी गई नहीं। तो जिसकी बाह्य दृष्टि नहीं गई उनको मोक्ष मार्ग कहाँ से मिलेगा? मोक्ष मार्ग तो अंतर्दृष्टि वाले को प्राप्त होता है। तो जिसने अंतर्दृष्टि से ज्ञानी की परमात्मा तुल्य पहचान करके भक्ति की हुई, जिसको भक्ति आई जिसको, उनको मोक्ष मार्ग विकट है, क्योंकि उसकी बाह्य दृष्टि चली गई। बाहर में सामान्य मनुष्य जैसी परिस्थिति होने के बावजूद भी अंतर्दृष्टि के कारण वो उनको परमात्मा मानते हैं और उसकी भक्ति उतनी आती है, तो उसको अंतर्दृष्टि के कारण से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति निकट हो जाती है। ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और इसकी पहचान के बिना निज परमात्मा की प्राप्ति किसी को हुई नहीं। तीन काल तीन लोक में ये सिद्धांत है कि जिसको भी अपने आत्मस्वरूप का या परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होता है उनको इसके पहले ज्ञानी की पहचान होती है। ज्ञानी की पहचान हुए बिना निज परमात्मा की प्राप्ति माने साक्षात्कार किसी को हुआ नहीं है न किसी को होगा भी, एक वस्तु स्थिति है। घड़ा ऊंधा पड़ा है वो आड़ा हुए बिना सीधा होने वाला नहीं है, एक वैज्ञानिक परिस्थिति है। ऊंधा घड़ा सीधा होता है, 180 डिग्री का एंगल का ट्रैवलिंग करता है वो, 180 डिग्री का सफर करता है वो, तो 90 डिग्री होने के बाद भी जहां तक 90 डिग्री नहीं आएगा वहां तक सीधा होने की कोई पोजीशन एक डिग्री में भी नहीं है। पहले 90 डिग्री में ऊंधा रहेगा, आड़ा होते 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 90 डिग्री पर बराबर आड़ा होएगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते सीधा हो जाएगा। ये साइंटिफिक पोजीशन है। तो ऐसे जीव का ऊंधापना है, तो सीधापना होने में आड़ा हुए बिना सीधापना कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए लिखा है कि ज्ञानी की पहचान बिना परमात्मा की निज स्वरूप की प्राप्ति माने साक्षात्कार किसी को हुआ ही नहीं। इसलिए इसी कारण से सर्व प्रकार से भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा उसको नमस्कार से लेकर, नमस्कार आदि भक्ति से लेकर पराभक्ति के अंत तक एक लय से आराधन करना, ऐसा शास्त्र का लक्ष्य है। ये बोध लक्ष्य है, शास्त्र बोध देता है तो इसके पीछे कोई लक्ष्य होता है, कोई एम होता है, इंटेंशन होता है, आशय होता है। क्या आशय होता है शास्त्रकार का? क्या आशय वो होता है कि सर्व प्रकार से भक्ति करने योग्य। भक्ति के 9 प्रकार हैं, उसको नवधा भक्ति कहते हैं। धा मैंने प्रकार, नवधा धा मैंने प्रकार, प्रकार में सब भक्ति के प्रकार उसमें आई, भक्ति के प्रकार बाकी नहीं रहते। नमस्कार, स्तुति, चरण स्पर्श, चरण धोते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, सब बात आ जाती है, कोई बात बाकी नहीं रहती। 9 प्रकार में सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार से सब बात आ गई। सर्व प्रकार से भक्ति करने योग्य ज्ञानी ऐसा नहीं लिखा, सर्व प्रकार से भक्ति करने योग्य ज्ञानी ऐसा नहीं लिखा, देहधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा, इतना शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे परमात्मा को तो निर्देही होता है, विदेही होते हैं परमात्मा, तो सिद्ध परमात्मा को देह नहीं है, वो तो विदेही है, लेकिन ये परमात्मा देहधारी है। देहधारी दिव्य मूर्ति, देखो किस नजर से देखा है ज्ञानी को, किस नजर से देखा है, इस नजर से देखा जाता है। जब नजर पलटती है, उलटती है, तो बाह्य दृष्टि खत्म हो जाती है और ज्ञानी को एक दिव्य मूर्ति दिखने में आती है। ज्ञानी की मूर्ति कैसे दिखने में आती है? दिव्य मूर्ति दिखते हैं, दिखने में आती है। देहधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा को नमस्कार आदि भक्ति से लेकर के पराभक्ति, मैंने आखिरी हद की जो भक्ति है उसका अंत होता है, पराभक्ति का भी लास्ट स्टेज जो होता है उसको एक लय से आराधन करना, लगातार आराधन करना, ऐसा शास्त्र का बोध लक्ष्य है। ऐसा शास्त्र में कहना चाहते हैं और उसकी नजर में क्या बात आती है देहधारी दिव्य मूर्ति के लिए कि ये परमात्मा देहधारी रूप हुआ है, ये कोई परमात्मा है, उसने मेरे लिए अवतार लिया है, 24 अवतार मां से चला है। अन्य मत में भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध है, ये हिंदू में राम श्री कृष्ण नरसिंह अवतार मच्छ कच्छ ऐसे बहुत से हैं। ये 24 अवतार है, वो बात यहां से निकली है कि ज्ञानी रूप परमात्मा को देखा तो उनको लगा कि परमात्मा तो जन्म नहीं लेता है, परमात्मा को जन्म मरण तो होता नहीं, तो इसका जन्म क्यों हुआ? तो वो तो मेरे लिए जन्म हुआ। क्या हुआ? कि इसका तो मेरे लिए जन्म हुआ है, ऐसा उनको लगता है, फील होता है। तो यहां से वो अवतार की बात चल गई, बात में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो पूरा 24 अवतार की बात चल गई कि चलो जैनों में 24 तीर्थंकर है तो हमारे में 24 अवतार लगा लो, 24 का आंकड़ा तो उतना का उतना रखो। हाँ, तो बात वहां से दूसरी गाड़ी दूसरे पटरी पर चढ़ गई। बाकी बात यहां से निकली है कि जिस मुमुक्षु को अपना भवंत दिखता है, यानी कि पहचान के बाद अपने आप का खुद का भवंत दिख जाता है कि अब मेरा निवेड़ा हो गया, तो उनको लगा कैसे हुआ है? मैं तो अनंत काल से परिभ्रमण करता था, क्योंकि तो ये ज्ञानी मिल गए, ज्ञानी नहीं मिले, देहधारी दिव्य मूर्ति परमात्मा मिले, और वो देहधारी उसने मेरे लिए तो देह धारण किया, वरना ये क्यों इधर आते? इस परमात्मा देहधारी हुए हैं, ऐसा ही ज्ञानी पुरुष के प्रति जीव की बुद्धि हो जाने से भक्ति उठती है, तो ऐसे उठती है। उसको परम विनय कहते हैं, परम विनय होते हैं तो उसमें कोई विनय में भक्ति में कोई कमी नहीं रहती। परमात्मा ही देहधारी रूप से हुए हैं, ऐसा ही ज्ञानी पुरुष के प्रति जीव को बुद्धि होने से भक्ति उगती है, उगलती है, तब इस यथार्थ रूप से उगती है। और यह भक्ति क्रमशः आगे बढ़कर के पराभक्ति रूप होती है, ये भक्ति आगे बढ़कर के पराभक्ति के स्टेज पर पहुंच जाती है। इस विषय में श्रीमद् भगवत भागवत में ब्रह्ममत का शास्त्र बोला जाता है, जिसमें श्री कृष्ण चरित्र है, इस विषय में श्रीमद् भागवत में और भगवत गीता में बहुत से भेद मैंने बहुत से प्रकार प्रकाशित करके यही लक्ष्य की प्रशंसा किया है। जो लक्ष्य है ज्ञानी पुरुष की पहचान का परमात्मा के रूप में, उसी का ही प्रशंसा किया है भागवत में और भगवद गीता में, वो बात आती आती है। अधिक क्या कहना, अन्य मत में वो बात उस तरह से आई है। जैन में भी ज्ञानी तीर्थंकर देव में लक्ष्य होने के लिए पंच परमेष्टी मंत्र में नमो अरियंतानम पद के बाद सिद्ध को नमस्कार किया है। ये नमस्कार मंत्र है जैन संप्रदाय में, वो अनादि का है, कभी किसी ने लिखा नहीं, बनाया नहीं, अनादि से चलता है। और अनादि से वो पंच परमेष्टी में अरिहंतों को पहले नमस्कार किया है, फिर सिद्ध को नमस्कार किया। ऐसा क्यों? जो ऊपर के स्थान में है उसको तो पहला आदर करना चाहिए और नीचे के स्थान वाले को बाद में नमस्कार करना चाहिए। इसके बजाय ऐसा कर दिया कि 13वें गुण स्थान वाले को पहले नमस्कार किया और 14 गुण स्थान से भी ऊपर गए, सभी गुण स्थान पूरा करके निर्वाण पद को प्राप्त हुए उसको पीछे रखा। क्या कारण है? कि ज्ञानी तीर्थंकर देव में लक्ष्य होने के लिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष मिलते हैं, सिद्ध परमात्मा किसी को भी प्रत्यक्ष मिलते नहीं है। नमस्कार करने वाले भी स्वार्थी, देखो जो प्रत्यक्ष मिलता है उसको नमस्कार पहले करता है, जो प्रत्यक्ष नहीं मिलता है जो भले ही ऊपर के स्थान में हो उसको बाद में नमस्कार करेंगे, क्योंकि हमारा स्वार्थ यहां से सत्ता है ना, तो उसको पहले नमस्कार करते हैं। इसमें कोई स्वार्थ का दृष्टिकोण नहीं है, ये तो व्यंग है। वास्तव में प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर क्या है यही समझाने का यहां आशय रहा है कि परोक्ष होने वाले सिद्ध परमात्मा कितने भी महान हो लेकिन प्रत्यक्ष से जो असर पहुंचती है, प्रत्यक्ष दर्शन से जो असर पहुंचती है वो परोक्ष दर्शन से कभी पहुंचती नहीं है। तो ज्ञानी में ये प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वो ज्ञानी सत्पुरुष को सत्पुरुष में प्रत्यक्ष दर्शन कराने का हेतु से पंच परमेष्टी में ये व्यवस्था हुई है। ये कृपालु देव ने कहां से रहस्यार्थ खोला है, ये रहस्यार्थ है, इस विषय का रहस्य वो है, उन्होंने खोल दिया कि देखो ज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष मिलते हैं, ऊपर ऊपर वाले उतने प्रत्यक्ष नहीं मिलते हैं, जितने अवेलेबिलिटी ज्ञानी की होती है उतनी मुनि की नहीं होती है, उतनी तीर्थंकरों की नहीं होती और सिद्धि को सिद्धों को तो कभी होती ही नहीं, क्योंकि मुनिराज जंगल में रहते हैं, वो बस्ती में रहते नहीं। जो छठे सातवें गुणस्थान वाले हैं वो बस्ती में रह ही नहीं सकते, चाहे दिगंबर हो या कोई भी हो, जो बस्ती में रहते हैं वो छठे सातवें गुणस्थान में है ही नहीं, क्योंकि इसका उपयोग ही उतना नहीं चलता। अगर बस्ती में रहना है तो परिवार में क्या आपत्ति थी, घरवाले सब अनुकूल थे, चक्रवर्ती वगैरह को तो घरवाले सब अनुकूल थे, वो तो ऐसा कहेंगे कि महाराज अब यहां महल में रहना हो तो महल में रहो और कोई घास फूस की कुटिया बना के रहना हो तो उसमें रहो, लेकिन हमारे नजर के सामने तो रहो, आपका दर्शन तो होता रहे। फिर भी वो क्यों छोड़ करके जंगल में चले गए? क्यों जंगल में रहते हैं? कि बस्ती के बीच में रहने के इनके परिणाम चलते ही नहीं। जो शहर का एनवायरमेंट होता है और जो वन का जो एनवायरमेंट होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। वो जंगल में भी नीरव, जहां कोई आवाज नहीं हुए, कोई प्राणी का चलने फिरने का आवाज नहीं हुए, ऐसे शांत जगह में जाकर के अपनी शांति की उपासना करते हैं। वो बात शहरों में कहां से मिलेगी? आजकल तो बंबई कलकत्ता जैसे शहर में मुनि लोग आते हैं, काम ही नहीं है। यहाँ का तो वातावरण बहुत गंदा होता है, रह ही नहीं सकते वो। और वो गुणस्थान कि जिस गुणस्थान में क्षण क्षण में आत्मानुभव होता है, कदम कदम पे, चलते चलते, खाते खाते, अंदर डुबकी लगा देते चले जाते हैं, शास्त्र लिखते लिखते भी अंदर में लीन हो जाते हैं, ऐसी दशा में कुटुंब के बीच में, बस्ती के बीच में रहना संभव ही नहीं है, उपयोगी नहीं चल सके उसका। इसलिए मुनियों की प्राप्ति नहीं है, नगर में जंगल में जाना पड़े, सत्संग करना हो और उतनी गरज हो तो जंगल में जाना पड़े, गुफा में, वन में, उपवन में, पर्वत में, और जाते थे गरजवान, वहां तो रास्ता नहीं होता है कि वो गाड़ी लेके जाए, कार लेके चले जाए, ऐसी बात नहीं होती है। पैदल जाना पड़े, घोड़े सवारी लेकर के जाना पड़े, घोड़ा चल सकता है, बहुत दूर हो तो घोड़ा लेके जाते, लेकिन उपदेश का गरज होता है तो जाते थे लोग जंगल में भी। आज तो सत्संग में कुछ दूर का मामला हो तो भाई हम नहीं जा सकते, बहुत दूर पड़ता है। बड़ा बाजार का सत्संग बड़ा बाजार में होना चाहिए और भवानीपुर का भवानीपुर में, तब सुविधा रहती है। इतना भीड़ भाड़ में आना जाना बहुत तकलीफ वाली बात होती है, तो गरज वाले का काम है उसमें। जिसको जितनी गरज है सत्संग की, उतनी इसकी पात्रता विशेष है। जिसको गरज नहीं है उनकी पात्रता है ही नहीं। और अरिहंत तो बहुत कम होते हैं, तीर्थंकर तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में 24 होते हैं, कितने? 1 करोड़ सागर मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ सागर, इतना लंबा काल। एक सागर में तो असंख्य अरब वर्ष होते हैं, 1 अरब 2 अरब नहीं, अरब अरब नहीं, असंख्य अरब वर्ष होते हैं। ऐसे एक कोड़ा कोड़ी सागर में सिर्फ 24 तीर्थंकर होते हैं, तो उनकी उपलब्धि तो उतनी आसान नहीं है। और हमारे जमाने में तो काल ही चला गया, भगवान महावीर स्वामी को 2500 साल हो गया, इसके बाद अब कोई अरिहंत का दर्शन हुए वो जमाना 84,000 साल तक नहीं मिलेगा, अब तो नहीं मिलेगा, अभी तो 2,500 साल हुआ है, लेकिन 21,000 ये पंचमारा का, छठारा का, और 21,000 फिर उत्सर्पिणी काल का छठारा, उसका 21,000, फिर पंचमारा, इसका 21,000, 4 21,000, 84,000 वर्ष तक कोई केवली होने वाले, तीर्थंकर आने वाले नहीं है। फिर चतुर्थारा चालू होगा, उसमें ये जो पद्म प्रभु भगवान है वो पहले आदिनाथ तीर्थंकर होंगे, जो श्रेणिक राजा का जीव है वो आने वाले 24 के आदिनाथ भगवान है, आदि मैंने पहला। 24,000 साल तक तो नहीं मिलेगा, और अपने को तो अपने लिए विचार करना है कि न वर्तमान में तीर्थंकर केवल ही मिलते हैं, न वर्तमान में साधु समागम संभव है। तो फिर वर्तमान में कोई संभव है तो अरबों में कोई एक होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, वो भी अरबों में एक होता है। आजकल इतनी स्कैर्सिटी है, तो इस विषय में इसकी प्रत्यक्ष योग होना ये बहुत दुर्लभ है। वो बताने के लिए जैन में भी पंच परमेष्टि मंत्र में नमो ओरियंताणम वो बात पहले लिखा है। पीछे सिद्ध को नमस्कार किया है, यही भक्ति के लिए ऐसी सूचना है, यही भक्ति के लिए ऐसी सूचना है कि प्रथम ज्ञानी पुरुष की भक्ति, यहां से वो आशय निकाला है कि प्रथम ज्ञानी पुरुष की भक्ति और यही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, निदान है, मूल कारण है। निदान माने मूल कारण है, यही निज परमात्मा की प्राप्ति का मूल कारण है और यही निज परमात्मा की भक्ति का भी मूल कारण है। भक्ति और प्राप्ति दोनों का निदान वही है। ये इस सारा पत्र में जो कोई और कठिनाई रहा करती है कि बार बार सुभाग भाई से लिखना हुआ, अपनी जो परिस्थिति थी उसमें देखा कि ये जो फागुन महीना है उसमें रुई का मक्सर पोष महीना से माह महीना से रुई का क्रॉप निकलता है और वो सीजनल बिजनेस करते थे। तो उन्होंने देखा कि इस साल में कोई मुनाफा होवे ऐसा दिखता नहीं है व्यापार में और कठिनाई रहा करती है, पैसों के लिए कठिनाई रहा करती है, उनके विकल्प आर्थिक कमजोर परिस्थिति के विषय में चल जाते थे और जैसे चलते थे वैसे वो लिख देते थे बिना छिपाए। इनकी सरलता थी, सरलता भी थी, विनम्रता भी थी, वैसे तो बड़े थे उम्र में, और कृपालु देव के साथ आत्मीयता भी थी, बिना आत्मीयता ऐसी बात लिखी नहीं जाती। इसमें से तीन बातें निकलती हैं, कितनी आत्मीयता होगी और कितनी नम्रता होगी और सरलता होगी कि अपनी कमजोरी जो भी है वो लिख देते थे। उस विषय में बहुत अच्छा और बढ़िया उपदेश यहां पर दिया है कि परमात्मा की भक्ति ही जिसको प्रिय है। आप तो परमात्मा के भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, ऐसे पुरुष को ऐसी कठिनाई न हो तो फिर सच्ची परमात्मा की भक्ति ही नहीं है ऐसा समझना। परमात्मा के भक्त को कैसे होते हैं कि उसका लक्ष्य परमात्मा में रहता है तो उसका ध्यान तो व्यापार में रहेगा नहीं, तो व्यापार कर सकेगा नहीं, ध्यान से सकेगा नहीं तो व्यापार में तो नुकसान ही आएगी आएगी, तो कठिनाई होगी होगी। तो परमात्मा के भक्त तो को तो कठिनाई होती ही है, उसमें कोई नई बात है ही नहीं। अगर नहीं है तो मान लेना चाहिए कि वो सावधानी रखता है अपने व्यवहारिक कार्यों में, व्यापार आदि में, तो उसको सच्ची भक्ति है ही नहीं, उसको पैसों की भक्ति है, परमात्मा की भक्ति नहीं है। देखो क्या मीटर लगाया है, ये नई नए प्रकार के यार्ड स्टिक है, नाप करने का प्रकार ही अलग है, अपने को क्या कहते हैं, परमात्मा की भक्ति ही जिसको प्रिय है, ऐसे पुरुष को ऐसी आर्थिक कठिनाई न हो तो फिर परमात्मा की फरी भक्ति उसको है ही नहीं, ऐसा समझ लेना। आर्थिक विषय में दरिद्र हो तो उसके लिए कोई लांछन नहीं है। वो भगवान का भक्त अगर दरिद्र हो तो इसके लिए वो कोई लांछन थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं है। वो तो इसका गौरव है, गौरव कि देखो उसका ध्यान नहीं है परमात्मा में, उतना ध्यान है कि उसका अपने व्यवहार में व्यापार में कोई ध्यान नहीं रहता, वही इसका गौरव है। अपने ये बहुत बड़ा दृष्टांत हुआ लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री मर गए एक्सीडेंटली, मॉस्को गए थे, रशिया गए थे, तो फिर इसके बैंक बैलेंस वगैरह देखा तो बहुत मामूली, कोई 500-200 रुपया, कोई ऐसी बहुत मामूली रकम निकली, जबकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपया बना लेते हैं, स्टेट के मिनिस्टर करोड़ों बना लेते, तो अरबों बनाएंगे ही बनाएंगे, जबकि उनके पास तो 1000 भी नहीं थे पूरे। ताजुब हो गया कि इतना बड़ा आदमी है और उनके पास पैसे ही नहीं बिल्कुल, ये क्या बात है। तो इसका जो गौरव था, ये दरिद्रता वो इसका गौरव था। ऐसे भगवान के भक्त अगर निर्धन होते हैं तो उनको ठीक है, इसका गौरव है इसमें, ये तो उसको तो ऐसा ही होना जरूरी है, ऐसा ही होना चाहिए, और उसमें ही वो पुरुषार्थ करता है। ऐसी परिस्थिति में इसका पुरुषार्थ चलता है, बाकी अनुकूलता में तो जीव फंसता है, इसमें क्या पुरुषार्थ करेगा। उसको परमात्मा की भक्ति ही नहीं है, अथवा तो ये बहुत बड़ा व्यंग किया है यहाँ पर, तो कृपा गुरुदेव के लेखने में थोड़ा व्यंगात्मक दिखता है, कहीं कहीं जगह पे बहुत सी बातें व्यंगात्मक दिखती है, बहुत तो अच्छे अच्छे व्यंग करते थे। अथवा तो चाहिए, मैंने जानबूझ करके परमात्मा ने, परमात्मा की इच्छा रूप जो माया होती है वो अनिमत में ये सब चलता है। अनिमत के शास्त्र पढ़े हो और अनिमत में जन्म लिया वो समझते हैं, वहां क्या है कि परमात्मा तो निरंजन निराकार शुद्ध होते हैं, लेकिन इस जगत की रचना उसने किया, ये जगत बनाया, तो क्यों बनाया कि ये तो एक भगवान की माया जाल है। सारा जगत बनाया है, फिर वो जो माया है वो समेट लेंगे तो प्रलय हो जाएगा और कोई प्राणी जगत में नहीं रहेंगे, शून्य हो जाएगा सब, प्रलय हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं कि इनकी ये माया की इच्छा होती है, तो इच्छा से ऐसी माया हो जाती है, तो परमात्मा भी ऐसी माया करते हैं इच्छा करके, ऐसा वहां चलता है। कोई लॉजिक वॉजिक इसके पास है ही नहीं, लेकिन ऐसा चलता है, अंधश्रद्धा से बहुत चलता है। तो उस बात का व्यंग किया है कि जानबूझ के परमात्मा की इच्छा रूप जो माया है उसने वैसी कठिनाई भेजने का कार्य उसको विस्मरण हो गया होगा। अगर कोई भगवान के भक्त पैसा वाला होता है तो समझ लेना कि माया बेचारे भूल गए वहां भूली पड़ी है वो, तो भगवान के भक्त के घर पर पहुंचे, बाकी भगवान के भक्त को भक्त के घर माया जा ही नहीं सकती बेचारी, क्या वहां उसको एंट्री मिलती नहीं, माया को वहां एंट्री नहीं मिलती, इसलिए प्राय तो वो नहीं जाते, लेकिन भूल से चली गई होगी। अगर कोई भक्त पैसा वाला हो तो माया भूल से चली हुई, वो जानबूझ करके गई होगी ऐसा लगता है। जनक विदेही और महात्मा कृष्ण में माया का विस्मरण हुआ दिखता है। और जो सीता जी के पिताजी थे, रामचंद्र जी के ससुर, वो जनक राजा महाज्ञानी थे। रामचंद्र जी भी ज्ञानी थे और जनक राजा भी ज्ञानी थे। उस जमाने में घर घर में ज्ञानी होते थे, तो उतने ज्ञानी थे कि देह होने पर भी उनकी दशा देह रहित जैसी हो जाती थी। और वो देह रहित जैसी दशा हो जाती थी, उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई, पुराणों में प्रसिद्ध हो गए। वो तो बड़े राजा थे, उनके पास तो पैसे थे, और श्री कृष्ण भी तीन खंड के अधिपति थे, पूरी द्वारका सोने की थी, एक एक महल 16108 महल 16108 रानी के, सब सोने के, सबको एक एक जिन मंदिर अपने अपने सोने के, सब पूरा द्वारका ही सोने के बनाया था। इतने संपत्ति थी, तो कि माया ने विस्मरण वहां किया हो ऐसा लगता है। ऐसे ऐसे लोगों में माया ने विस्मरण कर दिया है, ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, वो भूल से भी चली गई वहां। तथापि वैसा नहीं है, ऊपर ऊपर से ऐसा दिखेगा, वास्तव में वैसा नहीं है। जनक विदेही की कठिनाई के विषय में यहाँ पर कुछ कहना योग्य नहीं है, क्योंकि वह अप्रकट कठिनाई है। वो खुद कुछ जानते होंगे, खुद पार्वदेव, अपने को तो मालूम नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ कठिनाई थी। लेकिन इसकी बात की चर्चा करना योग्य नहीं है, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। कुछ चर्चाएं ऐसी होती है कि जीव उल्टा अर्थ पकड़ लेता है, तो ऐसी चर्चा समूह के बीच में नहीं होनी चाहिए, या खास करके योग्य जीव को ही ऐसी बात कहनी चाहिए, तो वो बात को नहीं करेंगे, क्योंकि वो अप्रकट कठिनाई थी। और महात्मा कृष्ण की संकट रूप कठिनाई तो प्रकट ही है कि सब स्वाहा हो गया था। जो द्वारका में आग लगी, सब जल गया, जिन मंदिर भी जल गए, महल भी जल गए, कुटुंब परिवार भी जल गए, सब स्वाहा हो गए, खाक हो गई सब। उनकी संकट रूप कठिनाई प्रकट ही है, और उस तरह से अष्ट महासिद्धि और नव निधि भी प्रसिद्ध है, और रिद्धि सिद्धि के धनी भी थे, वो बात भी प्रसिद्ध है। तथापि कठिनाई तो घटारत ही थी और होनी चाहिए, ये हमारा मत है। सभी ज्ञानियों का ये मत है कि जो कठिनाई है ये तो होनी चाहिए, और उन लोगों को भी थी, तो योग्य ही थी, घटारत मैंने योग्य ही थी। अगर कठिनाई आती है तो बाहर में प्रतिकूलता आती है, तो ये योग्य ही है, होनी ही चाहिए। उसमें ही पुरुषार्थ विशेष रूप से जागृत होता है। ये योग्यता के विषय में ऐसा सिद्धांत है कि योग्य सुपात्र मुमुक्षु जीव को लेकर के ज्ञानी मुनि जो भी होते हैं मोक्ष मार्ग के, मोक्ष मार्ग में धर्मात्मा, सभी को जब जब बाह्य प्रतिकूलताएं आती है, तब उनका पुरुषार्थ विशेष होकर के उसको विशेष आत्मलाभ का ये कारण बनता है। इसलिए वो कठिनाई को नहीं चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं बनता। कभी कभी तो ज्ञानी कठिनाई नहीं आती है तो उदीर्णा करके भी कठिनाई को ले आते हैं, ऐसे भी होते हैं। वो तपश्चर्या यहां से निकली है, बाह्य तपश्चर्या का व्यवहार कहां से चला, हमारे धर्म के क्षेत्र में बाह्य तपश्चर्या का व्यवहार कहां से चला है? ये तो यहां से तो चला है कि घर में तो खाना भरा है, भंडार भरा है, फिर भी हम नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे क्यों? कि कठिनाई की जरूरत है हमको, तभी हमारा पुरुषार्थ और चलेगा, और लाभ होगा। ये मुनाफा बढ़ाने का तरीका है, मुनाफा मैंने निर्जरा आत्मशुद्धि बढ़ाने का वो तरीका है। तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है, लेकिन किसको? ज्ञानियों को। उसके तप को ही तप कहते हैं, क्योंकि उसमें वो स्वरूपी आराधना विशेष रूप से करते हैं।
913
हाँ, 913 में वही बात है, असाता के विषय चला है तो लिखा है कि जब विशेष असाता आती है तो विशेष कल्याणकारक वो बात बनती है उनके लिए। जितनी वेदना बढ़े उतना पुरुषार्थ बढ़े, सामने हारते नहीं है वो, उदय के पास हारते नहीं है। बस ये लाइन जब से चालू हो गई उदय में नहीं हारने की, बस तब से जो योग्यता हुई, जब जब जितनी जितनी भी प्रतिकूलता आएगी, इच्छा विरुद्ध जो जितने भी प्रसंग बनेंगे उतना लाभ का कारण बनेंगे। पलटी मारेगा परिणमन है वो, एकदम पलटी मारेगा और पुरुषार्थ बढ़ा लेगा, सहज जैसा होता है। तथापि कठिनाई तो योग्य ही थी और होनी ही चाहिए। ये कठिनाई माया की है, ये कठिनाई तो माया की अपेक्षा से है, परमात्मा के लक्ष्य की तो वो सरलाई है। कठिनाई मैंने प्रतिकूलता तो माया की है, निज परमात्मा का लक्ष्य करने के लिए तो वो सुलती बात है, अनुकूल है। तो ज्ञानी हमेशा हमेशा प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देते हैं, बना लेते हैं, प्रतिकूलता को ही अनुकूलता बना लेते हैं। और ऐसा ही हो, और ऐसा ही हो, इस विषय में एक दृष्टांत, अन्य मत का एक दृष्टांत उदाहरण किया है। वो सुभाष भाई अन्य मत में समझते थे ना, तो उनकी भाषा में समझाते थे कि एक राजा था, राजा ने एक विकट तप करके परमात्मा का आराधन किया, बहुत कठिन तपस्या किया। अन्य मत में परमात्मा को नीचे बुलाने के लिए, साक्षात्कार कराने के लिए तपस्या जंगल में जाकर के लोग करते थे, राजा भी हो कोई भी हो। तो राजा ने जंगल में जाकर के परमात्मा का आराधन किया और देहधारी रूप से परमात्मा ने उसका दर्शन दिया, साक्षात्कार करवाया कि देखो मैं आ गया, तुमको दर्शन करना है, मैं आ गया तुम्हारे सामने, कर लो। और वरदान मांगने को लिए कहा, और मैंने उत्तम से उत्तम चीज तुम मांग सकते हो मेरे से, कोई भी उत्तम चीज का वरदान ले लो मेरे से। वो राजा का नाम नहीं दिया है इसलिए यहां डॉट डॉट कर दिया है। उस राजा ने मांगा कि हे भगवान, ऐसी जो राजलक्ष्मी आपने मुझे दिया है वो ठीक नहीं किया, ये आपने गलती किया पहले से। हमको जो ये धन दिया, लक्ष्मी दिया, राज लक्ष्मी दिया, वो तो आपने ठीक नहीं किया। अगर आपका परम अनुग्रह मेरे पर हो, आपकी कृपा अगर मेरे पर अच्छी तरह से हो, तो पंच विषय के साधन रूप ये जो राज लक्ष्मी है, जिससे पंच विषय के साधन मिलते हैं, हमको अब से बाद इसका स्वप्न भी नहीं हो। राजलक्ष्मी तो मिले नहीं, लेकिन स्वप्न में भी नहीं मिले कि हम राजा बने हैं, क्योंकि हमको ये पंच विषय में झुकना नहीं है। तो स्वप्न में भी ऐसी लक्ष्मी न हो, ऐसा वरदान तुम हमको दे दो, अगर तुमको कृपाई करनी है तो ऐसी कृपा करो कि ऐसी लक्ष्मी हमको स्वप्न में भी नहीं मिले। तो परमात्मा है वो दिंग हो गया, मैंने दिंग होना, मैंने क्या हिंदी में दिंग बोलते हैं, महा आश्चर्य हो जाए तो बोलते हैं गुजराती में, दिंग थे गया, बहु आश्चर्य था इतने। तो परमात्मा को भी आश्चर्य हो गया, करे ये भक्त तो कोई जबरदस्त आदमी है। परमात्मा दिंग होकर के तथास्तु होकर के स्वधाम चले गए। कथा किया पत्र में, एक छोटी सी कथा लिख दी है कि देखो जो सच्चे परमात्मा के भक्त होते हैं ये ऐसे होते हैं कि खुद राजा होने के बावजूद भी कहेंगे कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको इसमें सुख है नहीं, क्योंकि हमको इसमें सुख है नहीं, वो उपाधि हमारी तो बढ़ती है राज चलाने में, जो भी राजकाज होते हैं उसमें तो उपाधि बहुत है, तो हमको वो नहीं चाहिए। कहने का आशय ऐसा है कि ऐसा ही योग्य है, अब आशय उस पर से निकाला कि ऐसा ही योग्य है, कठिनाई और सरलाई मैंने अनुकूलता और प्रतिकूलता, साता और असाता, यह भगवत भक्त को सरीखा ही है। उनको तो संभाव रहता है दोनों में, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुकूलता प्रतिकूलता साता असाता में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उसमें तो अच्छा पुरुषार्थ चलता है कठिनाई में, और पुनः कठिनाई और असाता तो विशेष अनुकूल है, ये तो विशेष अनुकूल है कि जहां माया का प्रतिबंध दर्शन रूप भी नहीं है, जहां माया का दर्शन होता नहीं, प्रतिबंध का दर्शन वहां नहीं होता, अनुकूलता का प्रतिबंध नहीं रहता। आपको तो यह वार्ता जानने में है, क्या लिखते हैं आप तो ये जानते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है। तो सुभाष भाई तो बहुत पात्र थे, काफी समझते थे, समझदार थे, तो लिखते हैं कि आपको तो यह वार्ता जानने में है, तथापि कुटुंब आदि में कठिनाई होनी नहीं चाहिए, ऐसा परिणाम आ जाता हो तो कारण यह है, ऐसा परिणाम उदय के कारण से उदय भाव आ जाते हो कि कुटुंब को खाने पीने की तो कम से कम व्यवस्था बन जाए, उतनी तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसा उदय में परमात्मा ऐसा कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है, प्रसादी है कि तुम अपने कुटुंब के प्रति निस्नेह हो, अपना तो छोड़ दो, ये मेरा कुटुंब है, ये बात छोड़ाने के लिए एक कठिनाई भेजी है कि अपनापन छोड़ दो, ऐसा ऐसा संदेशा भेजा है इसके पीछे। जहां तक अपनत्व रहेगा ये कुटुंब प्रतिबंध आत्मकल्याण करने देगा नहीं, तो ये सुभाग भाई को सिर्फ लिखा है, ऐसी बात नहीं है, हम सभी को लिखा है कि कुटुंब प्रतिबंध से मुक्त हो जाओ यदि आत्मकल्याण करना हो तो, कुटुंब में अपनत्व रखना है और आत्मकल्याण करना है दो बात बनने वाली नहीं है। उसके प्रति संभावी होकर के प्रतिबंध रहित हो, आप प्रतिबंध रहित हो जाओ, यह तुम्हारा है, कुटुंब तुम्हारा है, ऐसा मत मानो, ये पराये लोग है ऐसा मानो, अपने वाले हैं ऐसा मत मानो, और प्रारब्ध योग से ऐसा मानने में आता है तो ये मान्यता टालने के ये कठिनाई भेजी है, इरादा पूर्वक ये कठिनाई भेजी है आपकी मान्यता को खत्म करने के लिए, अधिक क्या कहना, यह ऐसा ही है, हमको तो ऐसा लगता है कि आपका जो ममत्व है, प्रतिबंध है, उसको छुड़ाने के लिए ये उदय तो अच्छा आया है। छोड़ो, अब तो प्रतिबंध छोड़ो, वरना डूब जाओगे, तो डूब जाओगे पूरे से पूरे कुटुंब के पीछे। तो ऐसा कह करके इनके जो वर्तमान परिस्थिति है उनके ऊपर भी उपदेश दिया है, और मुमुक्षु को जहाँ तक कुटुंब प्रतिबंध रहता है वहाँ तक देह प्रतिबंध अधिक रहता है, क्योंकि वो तो अनुकूलता बनाने वाले लोग हैं, और वहाँ तक संकल्प विकल्प प्रतिबंध भी इससे अधिक रहता है, क्योंकि विकल्प तो चलेगा ही कुटुंब का, शरीर का, तो वहाँ तक आत्मकल्याण में बाधा रहती है। यहाँ तक।